ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ
नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ
नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
नष्टप्रायेष्वपत्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम चौथा स्कंध, शिवजी द्वारा की गई स्तुति का गान, 24वां अध्याय, श्लोक संख्या 47-48। प्रीति
प्रीति
प्रहसिता अपांगम
अपांगम
अलकैः
अलकैः
रूप
रूप
शोभितम्
शोभितम्
लसत्
लसत्
पंकज
पंकज
किञ्जल्क
किञ्जल्क
दुकूलम्
दुकूलम्
मृष्टा
मृष्टा
कुण्डलम्
कुण्डलम्
स्फुरत्
स्फुरत्
किरीट
किरीट
वलय
वलय
हार
हार
नूपुरा
नूपुरा
मेखलम्
मेखलम्
शंख
शंख
चक्र
चक्र
गदा
गदा
पद्म
पद्म
माला
माला
मणि
मणि
उत्तम
उत्तम
रिद्धिमत्
रिद्धिमत्।
प्रीति प्रहसिता पांगम
प्रीति प्रहसिता पांगम
अलकैरूप शोभितम
अलकैरूप शोभितम
लसत् पंकज किञ्जल्क
लसत् पंकज किञ्जल्क
दुकूलम् मृष्टकुण्डलम्
दुकूलम् मृष्टकुण्डलम्
स्फुरत् किरीटवलय
स्फुरत् किरीटवलय
हार नूपुरमेखलम्
हार नूपुरमेखलम्
शंख चक्र गदा पद्म
शंख चक्र गदा पद्म
माला मण्युत्तम उत्तम ऋद्धिमत्
माला मण्युत्तम ऋद्धिमत्।
प्रीति प्रहसिता पांगम
प्रीति प्रहसिता पांगम
अलकैरूप शोभितम
अलकैरूप शोभितम
लसत् पंकज किञ्जल्क
लसत् पंकज किञ्जल्क
दुकूलम् मृष्टकुण्डलम्
दुकूलम् मृष्टकुण्डलम्
स्फुरत् किरीटवलय
स्फुरत् किरीटवलय
हार नूपुर मेखलम्
हार नूपुर मेखलम्
शंख चक्र गदा पद्म
शंख चक्र गदा पद्म
माला मण्युत्तम ऋद्धिमत् ऋद्धिमत्
माला मण्युत्तम ऋद्धिमत्।
प्रीति प्रहसिता पांगम
प्रीति प्रहसिता पांगम
अलकैरूप शोभितम
अलकैरूप शोभितम
लसत् पंकज किञ्जल्क
लसत् पंकज किञ्जल्क
दुकूलम् मृष्टकुण्डलम्
दुकूलम् मृष्टकुण्डलम्
स्फुरत् किरीटवलय
स्फुरत् किरीटवलय
हार नूपुर मेखलम्
हार नूपुर मेखलम्
शंख चक्र गदा पद्म
शंख चक्र गदा पद्म
माला मण्युत्तम ऋद्धिमत्
माला मण्युत्तम ऋद्धिमत्।
प्रीति प्रहसिता पंगम
प्रीति प्रहसिता पांगम
अलाकैरूपशोभितम्
अलाकैरूपशोभितम्
लसत्पङ्कजझञ्झल्का
लसत्पङ्कजझञ्झल्का
दुःकूलम् दृष्टकुण्डलम्
दुःकूलम् दृष्टकुण्डलम्
स्फुरत्किरीटवलया
स्फुरत्किरीटवलया
हारनूपुरमेखलम्
हारनूपुरमेखलम्
शङ्खचक्रगदा पद्मा
शङ्खचक्रगदा पद्मा
मालामण्युक्त उत्तमार्जितम्
मालामण्युक्तमर्जितम्
प्रीति प्रहसितापांगम्
प्रीति प्रहसितापांगम्
अलकैरूपशोभितम्
अलकैरूपशोभितम्
लसत्पङ्कजकिञ्जल्का
लसत्पङ्कजकिञ्जल्का
नुकूलं दृष्टकुण्डलम्
नुकूलं दृष्टकुण्डलम्
स्फुरत्किरीटवलया
स्फुरत्किरीटवलया
हारनूपुरमेखलम्
हारनूपुरमेखलम्
शङ्खचक्रगदापद्मा
शङ्खचक्रगदापद्मा
मालामण्युक्तं ऋद्धिमान्
मालामण्युक्तं ऋद्धिमान्
और कोई प्रीति प्रहसितापांगम्
प्रीति प्रहसितापांगम्
अलकैरूपशोभितम्
अलकैरूपशोभितम्
लसत्पङ्कजकिञ्जल्का
लसत्पङ्कजकिञ्जल्का
दुःकूलं दृष्टकुण्डलम्
दुःकूलं दृष्टकुण्डलम्
सुरत्किरीटवलया
सुरत्किरीटवलया
हारनूपुरमेखलम्
हारनूपुरमेखलम्
शङ्खचक्रगदा पद्मा
शङ्खचक्रगदा पद्मा
मालामणियुक्तमरिद्धिमा
मालामणियुक्तमरिद्धिमा
प्रीति
प्रीति
अनुग्रहपूर्ण
अनुग्रहपूर्ण
प्रहसित
प्रहसित
हास्य
हास्य
अपांगम
अपांगम
तिरछी चितवन
अलकैः
घुंघराले वाले बालों से रूप सौंदर्य शोभितम सुशोभित लसत चमकता हुआ पंकज कमल का किंजल का केशर दुकूलम वस्त्र मृष्ट झल झलमलाते कुंडलम कान के आभूषण स्फुरत चमचमाता किरीट मुकुट वलय कंकण हार गले की माला नूपुर पांव का घुंघरूदार आभूषण मेखलम करधनी शंख
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 चक्र
चक्र
गदा
गदा पद्म कमल का फूल
माला
फूल की माला मणि
मोती
उत्तम श्रेष्ठ
रिद्धिमत
इस कारण और भी सुंदर अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा भगवान अपने मुक्त तथा दयापूर्ण हास्य तथा भक्तों पर तिरछी चितवन के कारण अनुपम सुंदर लगते हैं।
गाड़ी
गाड़ी
वो टीचर आती है वहाँ स्कूल की टीचर यहाँ पे पार्क करती है गाड़ी।
अच्छा अच्छा आवाज़ वहाँ से आ रहा
है पार्किंग से पार्किंग में नहीं
रहने दो वे क्या कर सकते हो उनको गाड़ी चलाना ही है गाड़ी के बिना तो जा नहीं सकते हो तो बैटरी डाउन पूरा खत्म हो जाएगा उनका बैटरी ऐसे कर करके भगवान अपने मुक्त तथा दयापूर्ण हास्य तथा भक्तों पर तिरछी चितवन के कारण अनुपम सुंदर लगते हैं। उनके बाल काले तथा घुंघराले हैं। हवा में उड़ता उनका वस्त्र कमल के फूलों से उड़ते हुए केशर रज के समान प्रतीत होता है। उनके झलमलाते कुंडल, चमचमाता मुकुट, कंकण, वनमाला, नूपुर, करधनी तथा शरीर के अन्य आभूषण शंख, चक्र, गदा तथा कमल पुष्प से मिलकर उनके वक्ष स्थल पर पड़ी कौस्तुभ मणि की प्राकृतिक शोभा को बढ़ाते हैं। तात्पर्य: प्रहसितापांगम शब्द जो कृष्ण की मुस्कान तथा चितवन का द्योतक है, गोपियों के साथ भगवान कृष्ण के व्यवहार के प्रसंग में प्रयुक्त है। जब गोपियों के हृदय में वे माधुरी रस की वृद्धि करते हैं तो भगवान सदैव विनोद मुद्रा में रहते हैं। शंख, चक्र, गदा तथा पद्म या तो उनके हाथों में या हथेली में दिखाए जाते हैं। हस्तरेखा ज्योतिष के अनुसार जिसकी हथेली में ये चिन्ह पाए जाते हैं वह महापुरुष होता है और ये भगवान को सूचित करने वाले हैं। अनुवाद को दोहराइए।
भगवान
अपने मुक्त
तथा दयापूर्ण
हास्य
तथा भक्तों पर
तिरछी चितवन के कारण अनुपम सुंदर लगते हैं।
उनके बाल
काले तथा घुंघराले हैं।
हवा में उड़ता
उनका वस्त्र
कमल के फूलों में से
उड़ते हुए
केशर रज के समान प्रतीत होता है।
उनके झलमलाते कुंडल
चमचमाता मुकुट
कंकण
वनमाला
नूपुर
करधनी
तथा शरीर के अन्य आभूषण
शंख
चक्र
गदा
तथा कमल पुष्प
से मिलकर
उनके वक्ष स्थल पर पड़ी कौस्तुभ मणि की
प्राकृतिक शोभा को
बढ़ाते हैं। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकय चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे ये विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्रीअद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। इस श्लोक को यदि अच्छी तरह से समझ लें और इसके ऊपर हम ध्यान कर सकें निरंतर तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। क्योंकि यही जीवन की चरम सीमा या चरम लक्ष्य है, भगवान के प्रति पूर्णतया आकर्षित होना। हम आकर्षित उस वस्तु या व्यक्ति के प्रति होते हैं जो आकर्षक है। तो आकर्षक गुणों में से शास्त्रों में 6 महत्वपूर्ण गुण बताए गए हैं। कौन से है वो 6? कौन सा श्लोक है जिससे भगवान शब्द की परिभाषा होती है? कौन बोले? कौन?
ऐश्वर्यस्य समाग्रस्य वीरस्य ईश्वरस्य श्रेया ज्ञान वैराग्यश्चैव सन्नमिता भगैतिङ्गणा।
तो क्या अर्थ है
ऐश्वर्य? मतलब भगवान में ये जो जिनमें 6 ये गुण ऐश्वर्यस्य वीर ईश्वर पूर्ण वीर पूर्ण वीर जो गुण है और वीर यशस्य जो यश मतलब जिसमें पूर्णता है ज्ञान और वैराग्य और सौंदर्य ये 6 गुण जिनमें परिपूर्ण मतलब थोड़े में नहीं संपूर्ण जिनमें है उनको हम भगवान बोल सकते हैं।
बहुत अच्छा। तो भग भग अर्थात ऐश्वर्य, भगवान अर्थात जो ऐश्वर्य पूर्ण है। जैसे मोते धनवान है कोई व्यक्ति या गुणवान है कोई व्यक्ति, बुद्धिमान है कोई व्यक्ति, तो बुद्धिमान अर्थात बुद्धि बुद्धि से युक्त, बुद्धि से भरा हुआ। धनवान मतलब धन से युक्त। उसी प्रकार भगवान मतलब भग या ऐश्वर्यों से युक्त, ऐश्वर्यों से भरे। तो हमारे पास भी ऐश्वर्य है, थोड़ा है, बहुत थोड़ा है। भगवान के पास असीमित है। तो किस तरह के ऐश्वर्य होते हैं? 6 प्रकार के ऐश्वर्यों का वर्णन पराशर मुनि ने विष्णु पुराण में किया है, जो श्लोक से मैं जिसका उल्लेख किया हुआ है। तो धन एक प्रकार का आकर्षण है, वैराग्य, ज्ञान, बल, बुद्धि, सौंदर्य, ये सब चीज़ें हैं। तो ये सौंदर्य का जो गुण है ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये भगवान के मुख्य गुणों में से है। वैसे भगवान की बुद्धि, बहुत बुद्धिमान भगवान है, ठीक है, परंतु हमारा आकर्षण भगवान के प्रति ज़्यादा इसलिए नहीं होता कि भगवान कितने बुद्धिमान हैं। हाँ, भक्त हमेशा विचार सोचता है भगवान कितने बुद्धिमान हैं, क्या कैसे ठीक ठाक करते हैं, ठीक है, परंतु उतना प्रेम जो आकर्षण जो होता है न वो बल से होता है भगवान के, न भगवान के वैराग्य के गुण से, न भगवान की बुद्धिमत्ता या ज्ञान से, परंतु सबसे ज़्यादा आकर्षण भगवान से होता है उनके सौंदर्य से। इसलिए श्री कृष्ण शब्द का अर्थ ही है क्या है? सर्व आकर्षक। कोई श्लोक बोल सकते हैं कृष्ण शब्द का अर्थ क्या है? मनोज कृषि भूवाचक शब्द नश्च निर्वृति वाचक तयोर ऐक्यम परम ब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते। कृष्ण शब्द की परिभाषा, कृष्ण शब्द के 2 अक्षर होते हैं। कौन से हैं 2 अक्षर? कृष्ण और ण। कृष्ण ण ये 2 अक्षर होते हैं जिनसे ये कृष्ण शब्द बना हुआ है। तो अभी कोई बताओ कृष्ण शब्द का अर्थ क्या, ण का अर्थ क्या? कृषि भूवाचक शब्द नष्ट निर्वृतिर्वाचक। कौन है, गांव के लोग हैं क्या, जा रहे हैं? श्लोक मिल गया, कृषि भूर्वाच पीछे देखो, विष्णुपुराण तो कृष का मतलब है आकर्षक, जो आकर्षक गुण होता है, और न मतलब जो हमको आनंद प्रदान करता है। तो जो सौंदर्य, जो आकर्षण से हमें खूब बहुत ज्यादा आनंद मिलता है, वो है कृष्ण। हाँ, अनुवाद पढ़ लो ब्रजेश कृष्ण।
कृष्ण शब्द भगवान के अस्तित्व का आकर्षक स्वरूप है।
आकर्षक स्वरूप है।
और न का अर्थ है आध्यात्मिक आनंद। कृष्ण धातु न प्रत्यय से मिलकर कृष्ण बनाता है, जिसका अर्थ है परम सत्य।
तो कृष्ण क्या है, भगवान का सर्व आकर्षक गुण, और न निर्वृत्ति वाचक, निर्वृत्ति मतलब ये दिव्य आनंद, ये संसार से परे जो सुख है वो। तो जब इन दोनों अक्षरों को मिलाया जाता है, तयोर ऐक्यम, जब इन दोनों अक्षरों को मिला जाता है, मिलाते हैं, एक करते हैं, परम ब्रह्म अभिधीयते, तो परम ब्रह्म का संबोधन होता है। कृष अक्षर ले लिया, ण अक्षर ले लिया, दोनों को जोड़ दिया, तो ये परम ब्रह्म का संबोधन हो जाता है। तो इसका तात्पर्य क्या है, कृष्ण मतलब सर्व आकर्षक, अण मतलब दिव्य आनंद, जिनके प्रति जो कि सबको आकर्षित करते हैं अपने आकर्षक गुणों के द्वारा। और जब कोई व्यक्ति कृष्ण के प्रति आकर्षित होता है तो उसे दिव्य आनंद की अनुभूति मिलती होती है। तो आकर्षण में से सर्वप्रथम ये सौंदर्य का गुण बहुत प्रधान है। अलग अलग रसों में कृष्ण के भक्त अलग अलग गुणों से आकर्षित होते हैं। सबका स्वभाव अलग अलग होता है। कोई लोग किसी वैरागी व्यक्ति के प्रति ज़्यादा आकर्षित होते हैं, कोई किसी बलवान व्यक्ति के प्रति ज़्यादा आकर्षित होते हैं, है ना, ऐसे होता है। कोई पहलवान है, ये ऐसा है, और कोई सोचे कोई धनवान है उससे प्रति आकर्षित होते हैं। तो लोगों के अलग अलग स्वभाव होते हैं। उसी प्रकार से यही जो आकर्षित होने की वृत्ति है भगवान में केंद्रित की जाती है, उसमें भी तरह तरह के रस होते हैं। तो सबसे अधिक जो आकर्षण भगवान के सौंदर्य के प्रति है वो गोपियों का है वृंदावन में। वैसे सभी लोग कृष्ण के सौंदर्य से आकर्षित होते हैं। माता यशोदा नंद महाराज भी कृष्ण के सौंदर्य को निहारना चाहते हैं सदैव, परंतु उनका जो एक भाव है कृष्ण के सौंदर्य के प्रति वो तरुणी गोपियों से भिन्न है। तो ये जो एक आकर्षण या सौंदर्य है भगवान का, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। तो अभी इस बारे में एक दो बार हम लोग यहाँ पहले चर्चा भी कर चुके हैं बहुत पहले, कि यदि भगवान श्री कृष्ण सर्व आकर्षक हैं तो फिर सारी दुनिया उनके प्रति आकर्षित क्यों नहीं होती है, क्यों नहीं हुई है? यदि वास्तव में श्री कृष्ण आकर्षक हैं तो सबको होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि हो सकता है श्री कृष्ण सर्व आकर्षक न हो सकता है। यदि सर्व आकर्षक हो तो सब लोग आकर्षित क्यों नहीं हो रहे हैं?
देखने की दृष्टि ठीक नहीं है।
लेकिन सर्व आकर्षक है तो होना ही चाहिए, क्यों नहीं होते? ऐसी कौन सी क्या शक्ति है जो हमें सर्व आकर्षक व्यक्ति से आकर्षित होने में रोक रही है? किसके पास इतनी ताकत है
माया
जो हमें रोक सके? सर्व आकर्षक भगवान से आकर्षित नहीं होने के लिए किसकी इतनी ताकत है हमें रोकने की?
उनकी,
कृष्ण
ही, स्वयं कृष्ण ही है और कोई हमें रोक नहीं सकता। भगवान इतने आकर्षक हैं, इतने आकर्षक हैं कि उनके प्रति आकर्षित नहीं होना जीवों के लिए संभव नहीं है। हमारे अंदर वो क्षमता नहीं है कि हम आकर्षित नहीं हो सकते। यदि नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब है कि इसके पीछे कृष्ण का हाथ ही है। केवल कृष्ण की ही इतनी शक्ति है कि वो जीव को अपने आप से, वो अर्थात भगवान से आकर्षित होने के लिए रोक लें। तो क्या भगवान जानबूझ कर ऐसे करते हैं कि आपको आकर्षित नहीं होना है मुझसे? क्यों करते हैं भगवान ऐसे?
हमारी इच्छा
के कारण, क्योंकि हम आकर्षित नहीं होना चाहते हैं भगवान से। हम भगवान की सेवा नहीं करना चाहते हैं, हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं, भगवान से अलग होके भोग करना चाहते हैं। तो भगवान कहते हैं ठीक है, तुम मेरे सौंदर्य, मेरे गुण आदि के प्रति आकर्षित नहीं होना चाहते हो ना, तो ठीक है, जिस तरह से तुम आकर्षित हो रहे हो मुझसे, किसी अन्य वस्तु से, तो वही सही। तो मैं मुझ में और तुम में एक माया का पर्दा लगा दूंगा। कौन सा भगवान का, कौन सा भगवद गीता का श्लोक है? भागवतम का है। बोलो, पूरा बोलो, जोर से जोर से। नाहं प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृतः, फिर मूढ़ो यम नाभिजानाति माम एभ्यः परम अव्ययम्। तो क्या अर्थ है इसका, कौन समझाएंगे? शब्द भेद करके कौन समझाएंगे? नाहं प्रकाशः
सब लोगों के सामने अपने आप को प्रकाशित नहीं करता हूँ। योग माया समावृत है, योग माया के द्वारा मैं आवरण
आवृत करता हूँ उनको, समावृत आवृत करता हूँ, अर्थात उनकी आंखों के सामने एक पर्दा डाल देता हूँ। कौन सा पर्दा? योग माया का पर्दा, माया का पर्दा डाल देता हूँ, जिसके द्वारा वो लोग मुझे देख नहीं सकते। और
मूढ़ो यम नाभिजानाति, और इस तरह से ये मूढ़ लोग जो है ये मुझे समझ नहीं पाते हैं। क्या नहीं समझ पाते हैं? कि मैं माँ एभ्यः परम अव्ययम्, मैं परम और अव्यय हूँ, ये वो लोग नहीं
जान पाते। हाँ, बहुत अच्छा। तो इस प्रकार से भगवान कृष्ण अपने माया शक्ति को हमारे आँखों के सामने डाल देते हैं। माया हमारे ऊपर छा जाती है, सवार हो जाती है, जिसके कारण हमें पता ही नहीं चलता है कि सत्य क्या है, वास्तव में आकर्षक जो वस्तु है वो क्या है, किस चीज़ में रमण करना चाहिए। हमें बिल्कुल वो ज्ञान नष्ट हो जाता है और हम सोचने लगते हैं कि ये संसार ही सब कुछ है। परंतु जब धीरे धीरे ज्ञान मिलने लगता है कि नहीं, ये संसार का कोई वस्तु या व्यक्ति आकर्षक नहीं है, केवल भगवान ही आकर्षक हैं, तब धीरे 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 से वो माया का पर्दा हटने लगता है और फिर हम भगवान को, भगवान से आकर्षित हो जाते हैं। ये खांसी अभी तक गई नहीं, आज ही नहीं, प्रत्येक बार जब मैं आता हूँ ये खांसी रहता है और इसी टाइप का खांसी है, जाता नहीं है। पिछली बार गाड़ी में आ रहे थे साथ में, तब भी ऐसे ही था। ये बहुत साल इसी तरह की खांसी चलती है रोज। जरा बाद में देख लेता हूँ, भूल जाऊंगा बाद में। तो ये कृष्ण का जो सौंदर्य का गुण है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए हम देखेंगे कि श्रीमद् भागवत में विशेष रूप से भगवान के सौंदर्य का वर्णन जगह 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 किया हुआ है। चैतन्य चरितामृत में भी और श्रीमद् भागवतम में भी। तो अभी आप सब विद्वान हैं, शास्त्रज्ञ हैं, सबने शास्त्र पढ़े हैं, भगवान के भक्त हैं, तो ऐसे कोई श्लोक आप बोलते जाइए जिनमें कि भगवान के सौंदर्य का वर्णन है।
ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि राधे गोविंद सर्व कारण कारण चिंता मणि प्रकर सत्म सुख।
ये बात सही है, ईश्वर परम कृष्ण, परंतु इसमें कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन नहीं। बहुत अच्छा। अभी शब्द भेद करके, शब्द भेद करके समझाएं।
वेणुं क्वणन्तम्, वेणु बजाते बजाते
हुए, वेणुं क्वणन्तम्, फिर
अरविंद दला आयत अक्षम, अरविंद जो फूला खिला हुआ अरविंद है कमल, उसकी तरह भगवान की आंखें हैं।
अरविंद
दला,
दला दल मतलब कमल के दल, अयत अयत अर्थात खिला हुआ, क्या खिला हुआ है, अक्ष अक्ष अर्थात आंखें, जो वेणु बजा रहे हैं, वेणु कुणंतम अरविंद दल अयत अक्ष, और जिनकी आंखें कमल दल की तरह खिले हुए हैं, वेणु कुणंतम अरविंद दलायताक्षम, फिर
बरह
अवताम सम, बरह क्या है,
मोरपंख,
अवताम सम अर्थात
पहना हुआ है,
कहाँ पे,
अपने
सर पे, अपने केश में, अपने बालों में आभूषण मोरपंख का लगाया हुआ है, बरहावताम सम। और फिर
असित अम्बुद सुंदर अंगम,
असित अम्बुद सुंदर अंगम, क्या अर्थ,
नए नए बने हुए जो,
असित अर्थात
नया,
असित
असित अम्बुद,
असित शब्द का अर्थ क्या है, सांवला, असित अम्बुद, सांवला क्यों होता है, पानी भरा हुआ होता है, जब गर्मी के समय बादलों को देखते हैं तो काले नहीं होते, सफ़ेद होते हैं, क्योंकि पानी नहीं होता है, जब पानी हो जाता है, भर जाता है बादलों में, तो सांवला रंग आ जाता है। असित अम्बुद, अम्बुद क्या है,
पानी,
पानी, बादल, बादल को अम्बुद क्यों बोलते हैं, अम्बु अम्बु अर्थात
पानी,
अम्बाने अम्बु, अम्बु और द, द मतलब नहीं देने वाला, तो क्योंकि बादलों से पानी आता है, बादल पानी देता है ना, तो अम्बु द, फिर सुंदर अंगम, असित अम्बुद सुंदर अंगम, उनका अंग जो है बहुत सुंदर है, और शरीर की कांति कैसे है, असित अम्बुद, तो एक सांवले रंग के बरसात के जो नए बादल की तरह है। तो इसी संदर्भ में जयदेव गोस्वामी क्या बोलते हैं, अभिनव जलधर सुंदर है, अभिनव, अभिनव मतलब नया नया, जलधर, जलधर क्या है, बादल, जल को धारण करता है बादल, अभिनव जलधर सुंदर है, तो वो सुंदर है कैसे, कैसे एक नए बरसात के बादल की तरह उनके शरीर की कांति है। तो वही बात यहाँ ब्रह्मा जी कहते हैं, असित अम्बुद सुंदरांगम, तो वेणुम कणंतम अरविंद दलायताक्षम बढ़ावतामसम असिताम्बुद सुंदरांगम, फिर कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम, क्या अर्थ है इसका? कंदर्प क्या है, कौन है?
कामदेव,
मदन। कामदेव के अनेक नाम है, जैसे मदन, कामदेव, कंदर्प। जो कामदेव होते हैं वो संसार में सबको मोहित करते हैं, क्योंकि वो बहुत आकर्षक हैं भौतिक दृष्टि से। तो कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम, तो भगवान कृष्ण की शोभा, उनका सौंदर्य और आकर्षण कोटि कोटि कंदर्पों से भी अधिक है। यदि हम लोग कंदर्प के कारण आकर्षित हो जाते हैं, कंदर्प अपना तीर छोड़ देते हैं, फूलों वाला तीर, और व्यक्ति घायल हो जाता है और फिर कविता लिखने लगता है और गीत गाने लगता है और पेड़ों के इर्द गिर्द घूमने लगता है ना, और संसार को त्यागने के लिए भी तैयार होता है, किन के लिए? उनके लिए। तो ऐसे कंदर्प से कोटि कोटि गुना ज्यादा आकर्षक कृष्ण है। कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम, कौन है ऐसे? गोविंद महादि पुरुषम तमहम भजामि। बहुत अच्छा, तो ये एक बहुत सुंदर श्लोक है ब्रह्म संहिता का, कृष्ण के सौंदर्य के संदर्भ में। और उसके बाद वाला ही श्लोक कौन सा? सब लोग साथ में बोलेंगे।
श्यामं त्रिमंगललितं नियत प्रकाशं गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि।
तो इस श्लोक का शब्दार्थ शब्द भेद करके अर्थ कौन बताएंगे? सुना लो रे, नहीं अंजनानंद
आलोल चंद्र का लसत वनमाल्य वंशी, वो चंद्र के जो शेप में लॉकेट है वो लटक रहा है भगवान के गले में, वनमाल्य और जो वन में बना वन से फूल निकाल बनाया हुआ माला उन्होंने पहना हुआ है और वंशी हाथ में है।
आलोल चंद्र का लसत वनमाल्य वंशी,
रत्नांगदम उनके शरीर रत्न की तरह।
नहीं नहीं, रत्नांगदम ऑर्नमेंट,
अलंकार
रत्नांगदम
प्रणय केली कला विलासम। तो प्रणय वो
किसका, ये रत्न का आभूषण कहाँ है? रत्नांगदम पढ़ो,
अडॉन विथ ज्वेल ऑर्नमेंट्स रत्नांगदम।
क्या, व्हाट इज अडॉन विथ ज्वेल ऑर्नमेंट?
इधर वनमाल्य वंशी रत्नांगदम प्रणय केली कला।
अनुवाद अनुवाद
अनुवाद एंड हुज टू हैंड्स आर अडॉर्न्ड विद द फ्लूट एंड ज्वेल्ड ऑर्नमेंट।
भगवान के हार आभूषित हैं, फिर वंशी वन, फिर प्रणय केली कला विलासम। क्या अर्थ इसका?
भगवान लीलाएं करते हैं, प्रणय की लीलाएं।
केली अर्थात लीला, प्रणय अर्थात प्रेम, तो प्रेम की लीलाएं प्रकाशित करते हैं भगवान, प्रकट कराते हैं विलास, उसमें आनंद लेते हैं। फिर
श्यामं
त्रिभंग ललित नियत प्रकाशम, क्या अर्थ?
हमेशा ही त्रिभंग रूप में अपने श्याम शरीर को प्रकाशित करते हैं सबके भक्तों के सामने।
नियत प्रकाशम मतलब सदैव सदैव अपने भक्तों के सामने ऐसे त्रिभंग रूप में विराजमान होते हैं। त्रिभंग अर्थात क्या?
तीन जगह,
तीन जगह,
तीन जगह टेढ़े हैं,
टेढ़े बके हुए हैं। इसलिए वृंदावन में उनका नाम क्या है? बांके बिहारी। तो कौन से तीन जगह में टेढ़े हैं, बाके हुए हैं? कमर में, कंधे में, गर्दन में, कमर में, घुटनों में। त्रिभंग। और उनका नाम है श्याम। श्यामम त्रिभंग ललितम नियत प्रकाशम। तो अपने आप को प्रकाशित इस प्रकार से करते हैं भगवान। वैसे ये त्रिभंग, ये जो भरतनाट्यम वगैरह इस प्रकार के हमारे पारंपरिक जो नृत्य आदि होते हैं ना, इनमें इन मुद्राओं का बहुत महत्व होता है। जैसे समभंग, समभंग मतलब ऐसा ना इस तरफ से ज्यादा ना उस तरफ से ज्यादा। अभंग मतलब किसी एक तरफ पे ज्यादा। अतिभंग बहुत ज्यादा एक तरफ टेढ़ा। और त्रिभंग तीन जगह में बका हुआ। तो ऐसे नृत्य करते समय ये सब बातें आती हैं, अभंग, अतिभंग, समभंग और ये त्रिभंग। तो भगवान क्या है? त्रिभंग। श्यामं त्रिभंग ललितं नियत प्रकाशं गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। बहुत अच्छा। और कोई श्लोक बताए भगवान के सौंदर्य के बारे में।
नमा पंकज नाभाय, नमा पंकज नारायणाय, नमा पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकज।
बहुत अच्छा। ये किन्होंने कहा श्लोक?
कुंती महारानी। हाँ,
तो इसका अर्थ शब्द भेद करके अर्थ समझाओ।
भगवान के रूप के बारे में वर्णन है, जो भगवान की नाभि है वो पंकज यानी कमल के समान है। नमा पंकज नाभाय, नमा पंकज मालिनी। कमल, भगवान ने जो माला पहनी है वो भी कमल की है। नमा पंकज नेत्र आया, भगवान के जो नेत्र है वो भी कमल के समान है। नमस्ते पंकज अंग, भगवान का पूर्ण अंग जो शरीर है वो कमल।
अंग्री, अंग्री क्या है?
पाद,
चरण, चरण को अंग्री कहते हैं। अंग ने उग्र है घ्र, जैसे पंकज अंग्री प्रभु। अंग्री तो यहाँ कौन सा शब्द है? नमस्ते पंकजां ग्रहे। ग्रहे मतलब दो, दो चरण उनके हैं ना। तो और उनके चरण कमल भी कमल पुष्प के समान है। तो भगवान कमल की तुलना क्यों की गई है भगवान से? तो क्या कमल भगवान से ज्यादा सुंदर है क्या? क्योंकि हम कहते हैं ये कमल की तरह सुंदर है, तो क्या कमल इतने ज्यादा सुंदर है?
ये जगत में तुलनात्मक दृष्टि से बोलने तो सबसे सुंदर ये जगत में हम कमल के लिए।
हाँ, क्योंकि हमारा अनुभव तो ये भौतिक जगत से ही सीमित है ना। इस भौतिक जगत के बाहर तो कुछ हमें पता नहीं है। तो जो हमारे अनुभव में है उनका उदाहरण लेके तुलना की जाती है ताकि हम हमें समझ में आए। इसलिए जब ये बताया जाता है ना असिताम्बुद सुंदरांगम की या नव अभिनव जलधर सुंदर है कि बरसात के बादलों के समान उनका रंग है, ये एक हमारे लिए एक उपमा है, तुलना है ताकि हम लोग थोड़ा समझ सके। वास्तव में भगवान ऐसे नहीं है। उनका सौंदर्य वर्षा ऋतु के बादलों से कहीं अधिक सुंदर है। क्योंकि ये बरसात का जो बादल ये तो भौतिक है ना, और भगवान तो आध्यात्मिक हैं। परंतु हमारे अनुभव में क्या है उसके अनुसार ये दृष्टांत दिए गए हैं ताकि हमारे हम कुछ अनुमान लगा सकें, कुछ कल्पना कर सकें। ये उद्देश्य है। इसलिए कमल की तुलना की गई है क्योंकि कमल वो सौंदर्य और शुद्धता का प्रतीक है और कोमलता का तो सौंदर्य है उसमें आ गया, है ना। कमल पुष्प बहुत सुंदर माना जाता है, बहुत शुद्ध माना जाता है, पवित्र, कीचड़ में होते हुए भी शुद्ध रहता है, इसलिए उसको पंकज कहते हैं। पंक अर्थात मिट्टी से भी, कीचड़ में से भी निकला हुआ, पंक और ज जन्म लिया हुआ, नीरज जल में से आया हुआ, सरोज तालाब में से, जल में से आया हुआ, ऐसे। तो एक तुलना है, बहुत अच्छा। नमः पंकज नाभाय, नमः पंकज मालिने, नमः पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजांग्रये। और एक श्लोक और कोई बताइए।
स्मेरम बंधु,
हाँ,
ये भक्ति रसामृत स्मेरम बंधु,
स्मेराम बंधु,
स्मेराम बंधु त्रया परिचिता,
त्रय परिचिता।
नहीं,
नहीं, नहीं, नहीं। बिना देखे हुए बताना।
स्मेरा बंगी त्रया परिचिता,
त्रय परिचिता, त्रय मतलब तीन,
त्रय परिचिता साक्षी विस्तीर्ण दृष्टि
वंशी निस्ताधर किशलयां उज्ज्वलां चंद्रकेण,
गोविंदाख्यम,
गोविंदाख्याम,
गोविंदाख्याम
हरितनुमितः,
हरितनुमितः
केशतीर्थोपकंठे, मा प्रेक्षिष्ठास
तव यदि,
तव यदि
सखी
बंधु संगे स्थिरंगः। बहुत अच्छा। तो हरिराम प्रभु हम सबको मना कर रहे हैं कि कृष्ण के पास नहीं जाना।
यदि आकर्षण है तो,
यदि संसार के प्रति कोई आकर्षण है तो कृष्ण के पास नहीं जाना। अभी हरिराम प्रभु ने हम सबको आदेश दे दिया कि कृष्ण को छोड़ो, कृष्ण से दूर चले जाओ। मां प्रेक्षिष्ठा मत देखो, किनको मत देखो, गोविंद आख्याम, जिनका नाम, वो व्यक्ति जिनका नाम गोविंद है, मां प्रेक्षिष्ठास मत देखो, मत जाओ उसके पास। मां प्रेक्षिष्ठास तव यदि, यदि बंधु अस्ति रंग है, अपने बंधुओं के साथ, अपने मित्रों के साथ, परिवार के साथ यदि कोई आसक्ति है, कोई लगाव है, तो मत जाना, मत देखना उस गोविंद को जो हरि है, हरि तनुम इतः। और वो क्या कर रहा है वो गोविंद, एक गोपी दूसरे को बोल रही है, क्या कर रहा है, स्मेराम, स्मेराम अर्थात हल्की स्मितहास है, जैसे इसी श्लोक में भी कहा गया है, प्रीति प्रहसित, तो हल्की मुस्कान भगवान की जो है, स्मित हास्य, ये भगवान की बहुत विशेष बात है। भंगी त्रय परिचिता, क्या मतलब,
त्रय मतलब तीन,
त्रिभंग, वही भंगी, भंग मतलब भंग हुआ है, त्रय मतलब तीन, त्रय, स्मेराम भंगी त्रय परिचिता, फिर साची विस्तीर्ण दृष्टि, क्या मतलब,
एक साइड से कृष्ण देख रहे,
तिरछी नजर से देखते हैं, ऐसे करके देखते हैं।
आज का श्लोक
साची, हाँ, आज के श्लोक में भी वही है, साची मतलब थोड़ा विस्तार से, और वो भी तिरछी। तो साची विस्तीर्ण दृष्टि, उनकी दृष्टि कैसी है, तिरछी है। और यहाँ पे भी अपांगम, तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में भी क्या कहते हैं, प्रहसितापांगम शब्द जो कृष्ण की मुस्कान तथा चितवन का द्योतक है, गोपियों के साथ भगवान कृष्ण के व्यवहार के प्रसंग में प्रयुक्त है। तो प्रहसितापांगम, ये दोनों गुण भगवान के आ रहे हैं, कौन सा है, भगवान का स्मित हास्य और तिरछी दृष्टि, ये दोनों चीजें हैं। स्मेराम भंगी त्रय परिचिताम साची विस्तीर्ण दृष्टिम, फिर वंशी, वंशी कहाँ है?
न्यस्ताधर,
न्यस्त अधर, वंशी न्यस्ताधर, न्यस्त धारण किया उन्होंने कहाँ पे? अधर के ऊपर, वंशी न्यस्ताधर किशलयाम, मतलब वो बहुत ही खिले हुए, खिला हुआ है, उनके अधर खिले हुए हैं, वंशी न्यस्ताधर किशलयाम उज्ज्वलाम चंद्र केण। अभी ये शरद पूर्णिमा की रात्रि का वर्णन है, जब पूर्णिमा के चांद की किरणें कृष्ण के ऊपर हैं, जब वो वंशी वट पे खड़े हैं, बांसुरी बजा रहे हैं, त्रिभंग रूप में खड़े हैं, हल्के मुस्कान और तिरछी दृष्टि, और फिर चांद की किरणें उनके चेहरे पे पड़ रही हैं और उनका चेहरा चमक रहा है, तेजस्वी लग रहा है, उज्ज्वलाम चंद्र केण। तो ये इतने आकर्षक हैं, इसलिए गोपी कहती है मत जाना यदि आकर्षण है तो। परंतु गोपियों को ये कहने का अभिप्राय क्या है? बिल्कुल उल्टा है। जब वो कह रही मत जाना, वास्तव में कहना चाह रही है जाना जरूर, अवश्य जाना। तो ये है, इसको क्या बोलते हैं?
अप्रस्तुत प्रस्तुतम। अप्रस्तुत प्रस्तुतम,
क्या अर्थ है इसका?
जिसको प्रस्तुत करना है उसको वो अप्रस्तुत कर रहे हैं,
उसको विपरीत कुछ कहना। हम कुछ कहना चाहते हैं परंतु हमारे शब्दों का अर्थ बाह्य दृष्टि से उसका बिल्कुल विपरीत है। जैसे आप में से जो गृहस्थ भक्त हैं, आपने अनुभव किया होगा, कोई बच्चा घर में कुछ उसको बोलते हैं कांच से मत खेलो मत खेलो, कोई कांच का कुछ है उधर, फिर भी बच्चा जाके खेलता है, खेलता खेलता उसको गिरा देता है, टूट जाता है कांच, तो माँ बोलती है शाबाश बहुत अच्छा किया तुमने। तो माँ, माँ के शब्द कैसे हैं? प्रशंसा के शब्द हैं, परंतु भाव क्या है? उसके बिल्कुल विपरीत है ना। तो शब्द प्रशंसा के हैं, अर्थ उल्टा है, निंदा के है, डांट का है। उसी प्रकार से यहां गोपियां उल्टे बोल रही हैं, मत जाना मत जाना, परंतु भाव क्या है? जाना जाना, बिल्कुल जाना। वो गोविंद से आकर्षित होना हमारे जीवन का लक्ष्य है। तो इस प्रकार से यहाँ रुद्र गीत में भी शिवजी भगवान कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं कि क्या क्या है कैसे। फिर से अनुवाद दोहराएंगे, फिर प्रवचन समाप्त करेंगे। भगवान अपने मुक्त तथा दयापूर्ण हास्य तथा भक्तों पर तिरछी चितवन के कारण अनुपम सुंदर लगते हैं। उनके बाल काले तथा घुंघराले हैं, हवा में उड़ता उनका वस्त्र कमल के फूलों में से उड़ते हुए केशर रज के समान प्रतीत होता है। उनके झलमलाते कुंडल, चमचमाता मुकुट, कंकण, वनमाला, नूपुर, करधनी तथा शरीर के अन्य आभूषण, शंख, चक्र, गदा तथा कमल पुष्प से मिलकर उनके वक्षस्थल पर पड़ी कौस्तुभ मणि की प्राकृतिक शोभा को बढ़ाते हैं। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे। आज हमारे बीच में मायापुर से भक्त, मायापुर में रहते हो ना, तपो गोपीनाथ, तपो नित्यानंद प्रभु है, साथ में दो भक्त नाम भूल गया, गिरिराज कृपा दास और
शांत रूप माधव दास।
अरे वाह, शांत रूप माधव दास, कितने बढ़िया नाम हमारे इस कौन में होते हैं, नहीं? तपो नित्यानंद, वाह। तो इन सब का हम स्वागत करते हैं। पहली बार आए इधर?
पहले थे
इधर ना,
नहीं तो पहले थे,
ये दोनों पहले
तो इन तीनों का। यहाँ और कोई नए तो नहीं आए ना अभी? हाँ, डॉक्टर
विनोद,
अभी वो हमारे डॉक्टर स्पर्श के साथ वहाँ सेवा कर रहे हैं, जाम्बोटी में, सब गांव के निवासियों की सेवा कर रहे हैं उधर। तो हम इन चारों भक्तों का स्वागत करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र कह के।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्णा हरि बोल।
महाराज, ये हमारा इच्छा इतना तीव्र है कि कृष्ण ही उनका आकर्षण को जब वो ढकते हैं, तो इसमें ये समझता है कि हमारा इच्छा के कारण ही हम लोग इधर। तो ये ऐसा लग रहा है कि कभी हम बोलते हैं भगवान का कृपा से ही हम लोग मुक्त हो जाए, मगर इसमें हमको लग रहा है कि भगवान का कृपा से ज़्यादा हमारा प्रयास,
या दोनों चाहिए ना। वो दामोदर लीला में तो वही सीखने को मिलता है ना, ये दो उंगली कम पड़ जाती है रस्सी बांधने समय, तो एक उंगली का तात्पर्य है भगवान की कृपा और दूसरी उंगली हमारा प्रयास, हमारी इच्छा, तो दोनों होने चाहिए। दोनों जब साथ में होंगे तब हम भक्ति में सफलता प्राप्त कर सकते हैं।
इसको थोड़ा कृपा और इच्छा में थोड़ा विश्लेषण, कृपा मतलब क्या?
कृपा, जब भी प्रभुपाद जी को कोई पूछते थे कि मुझे मेरे ऊपर कृपा कीजिए, तो बोलते कृपा मैंने आदेशों में दिया है, तुमको आदेश दिया है, सही मार्गदर्शन दिया है, ज्ञान दिया है, ये करो ये करो ये मत करो, वैसे करो, करोगे तो कृपा मिल जाएगी, नहीं करोगे तो फिर कैसे। तो भगवान कृपा देने के लिए तैयार हैं, परंतु हमें कृपा स्वीकार करने के लिए तैयार होना चाहिए। कृपा स्वीकार करना अर्थात आदेशों का पालन करना। ठीक है, हाँ, हरे कृष्णा, सबकी अपनी अपनी सेवा है, आगे चले। हरि बोल, हरे कृष्णा, जय हो। हमारे गोसेवक भी आए हैं, रुक्मिणी रमन प्रभु, देवकी तनय प्रभु, फिर वापस बैलों की सेवा करने जाना है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, बैठो।